नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ऑब्री कुक की द ई-लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन रोडमैप एक व्यावहारिक शुरुआती अनुकूल मार्गदर्शिका है, जिसका उद्देश्य ई-लर्निंग बनाने और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की प्रक्रिया को समझने योग्य बनाना है। यह पुस्तक खास तौर पर नए इंस्ट्रक्शनल डिजाइनरों, करियर बदलकर इस क्षेत्र में आने वालों और अपनी संस्था के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने वाले पेशेवरों को संबोधित करती है। इसका केंद्रीय विचार यह है कि प्रभावी डिजिटल प्रशिक्षण केवल आकर्षक स्क्रीन या जानकारी का संग्रह नहीं होता, बल्कि सीखने की जरूरत, स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य, मानव स्मृति, सामग्री की संरचना, सहयोग और मूल्यांकन पर आधारित एक सुनियोजित प्रक्रिया है। कुक उद्योग में प्रचलित ADIE और SAM जैसे ढांचों का परिचय देती है, साथ ही नीड्स असेसमेंट, टास्क एनालिसिस, स्टेकहोल्डर समन्वय और परीक्षण जैसे कामों को एक पेशेवर वर्कफ्लो में रखती है। पुस्तक का स्वर अपेक्षाकृत सहज और कम भयभीत करने वाला है, पर इसका विषय क्षेत्र व्यापक है। इसका लक्ष्य पाठक को सिद्धांतों की सूची देने के बजाय आरंभ से मूल्यांकन तक ई-लर्निंग परियोजना को संचालित करने की बुनियादी दिशा देना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को सामग्री निर्माण नहीं, सीखने की समस्या सुलझाने की प्रक्रिया मानना। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का काम केवल स्लाइड, वीडियो या क्लिक आधारित मॉड्यूल बनाना नहीं है। इसकी शुरुआत इस प्रश्न से होती है कि सीखने की वास्तविक समस्या क्या है और क्या प्रशिक्षण उसका उचित समाधान है। कॉर्पोरेट प्रशिक्षण, शिक्षा और अन्य कौशल केंद्रित संदर्भों में अक्सर कोई संगठन केवल इसलिए पाठ्यक्रम मांगता है क्योंकि प्रदर्शन में कमी दिखाई दे रही होती है, लेकिन कमी का कारण अस्पष्ट अपेक्षाएं, उपकरणों की अनुपलब्धता, खराब प्रक्रिया या प्रबंधकीय बाधा भी हो सकता है। ऐसे में केवल ई-लर्निंग बनाना समय और संसाधनों का गलत उपयोग हो सकता है। कुक का रोडमैप डिजाइनर को समस्या और समाधान के बीच ये अंतर समझने की दिशा देता है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि डिजाइनर को लक्ष्य समूह, अपेक्षित व्यवहार, कार्य परिस्थिति और सफलता के प्रमाण को समझना चाहिए। जब सीखने का लक्ष्य किसी मापे जा सकने वाले कार्य से जुड़ता है, तभी सामग्री की गहराई, अभ्यास और मूल्यांकन का चयन तर्कसंगत बनता है। यह दृष्टि नए पेशेवर को दृश्य सज्जा से आगे बढ़ाकर प्रदर्शन केंद्रित निर्णय लेने में मदद करती है। इसी कारण पुस्तक ई-लर्निंग को एक स्वतंत्र उत्पाद नहीं, बल्कि किसी व्यापक कार्यस्थलीय या शैक्षिक आवश्यकता के उत्तर के रूप में रखती है। दूसरा, नीड्स असेसमेंट और टास्क एनालिसिस से सही प्रशिक्षण लक्ष्य तय करना। रोडमैप में नीड्स असेसमेंट और टास्क एनालिसिस को परियोजना की प्रारंभिक निर्णायक गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीड्स असेसमेंट का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि वर्तमान प्रदर्शन और अपेक्षित प्रदर्शन के बीच अंतर कहाँ है। इससे यह तय करने में सहायता मिलती है कि प्रशिक्षण की जरूरत है भी या नहीं, और यदि है तो किस समूह को किस क्षमता की आवश्यकता है। इसके बाद टास्क एनालिसिस किसी कार्य को उसके आवश्यक कदमों, निर्णयों, ज्ञान और परिस्थितियों में विभाजित करता है। उदाहरण के लिए, किसी प्रक्रिया को जानना और उसे वास्तविक स्थिति में सही ढंग से लागू करना अलग बातें हैं। डिजाइनर को यह पहचानना होता है कि शिक्षार्थी को कौन से क्रम में क्या करना है, कहां गलती की संभावना है और किन संकेतों के आधार पर निर्णय लेना है। यह विश्लेषण अस्पष्ट उद्देश्यों, जैसे किसी विषय को समझना, को अधिक उपयोगी प्रदर्शन उद्देश्यों में बदलता है। फिर सामग्री केवल जानकारी सुनाने के बजाय उस कार्य के लिए आवश्यक अभ्यास तैयार कर सकती है। पुस्तक के व्यावहारिक रुख में यह चरण ग्राहक या विषय विशेषज्ञ की हर उपलब्ध जानकारी को पाठ्यक्रम में भरने से भी बचाता है। विश्लेषण यह छांटने का आधार देता है कि क्या अनिवार्य है, क्या संदर्भ सामग्री में रखा जा सकता है और क्या सीखने के लक्ष्य से बाहर है। परिणामतः पाठ्यक्रम अधिक केंद्रित, प्रासंगिक और मूल्यांकन योग्य बनता है। तीसरा, ADIE और SAM ढांचों के माध्यम से रैखिक योजना और पुनरावृत्त सुधार का संतुलन। कुक की पुस्तक ADIE और SAM जैसे उद्योग प्रचलित ढांचों को इस तरह रखती है कि वे नए डिजाइनर के लिए याद रखने योग्य शब्द ना रह जाएं, बल्कि काम को व्यवस्थित करने के साधन बने। ADIE में विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के चरणों के माध्यम से परियोजना को एक स्पष्ट क्रम मिलता है। इसका लाभ यह है कि टीम निर्माण शुरू करने से पहले समस्या, शिक्षार्थी और उद्देश्यों पर विचार कर सकती है। इससे बाद के चरणों में महंगे बदलावों की संभावना घटती है। दूसरी ओर, SAM जैसे पुनरावृत्त दृष्टिकोण का महत्व इस बात में है कि डिजाइन को पहली बार में पूर्ण मान लेने के बजाय छोटे नमूने बनाकर प्रतिक्रिया के आधार पर सुधारा जाए। ई-लर्निंग परियोजनाओं में ग्राहक की अपेक्षाएं, विषय की जटिलता और तकनीकी सीमाएं अक्सर काम के दौरान अधिक स्पष्ट होती है। इसलिए एक उपयोगी रोडमैप कठोर क्रम और लगातार सुधार दोनों की आवश्यकता को स्वीकार करता है। पुस्तक का संकेत यह है कि मॉडल अपने आप में समाधान नहीं है। उनका मूल्य उन सवालों में है जिन्हें वे टीम से समय पर पूछवाते हैं, जैसे लक्ष्य स्पष्ट है या नहीं, प्रारूप सीखने के अनुकूल है या नहीं, और परीक्षण से क्या पता चला। इस प्रकार ढांचे प्रशासनिक बोझ नहीं बल्कि निर्णयों को पारदर्शी और सहयोग को सुव्यवस्थित करने का माध्यम बनते हैं। चौथा, स्मृति और सीखने के सिद्धांतों के आधार पर स्टिकी लर्निंग डिजाइन करना। पुस्तक सीखने के सिद्धांतों और स्मृति की कार्यप्रणाली को ई-लर्निंग डिजाइन से जोड़ती है। यह संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल सामग्री में बहुत अधिक जानकारी, सजावटी तत्व या लगातार क्लिक कराना अपने आप बेहतर सीखने का प्रमाण नहीं है। प्रभावी डिजाइन को इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि शिक्षार्थी नई जानकारी को कैसे ग्रहण करेगा, उसे पहले के ज्ञान से कैसे जोड़ेगा और बाद में काम के समय उसे कैसे याद तथा लागू करेगा। स्टिकी लर्निंग का विचार इसी स्थायित्व और उपयोगिता की ओर संकेत करता है। इसके लिए सामग्री को स्पष्ट लक्ष्य के इर्द गिर्द संगठित करना, अनावश्यक सूचना हटाना, जटिल काम को संभालने योग्य हिस्सों में बांटना और वास्तविक निर्णयों से जुड़ा अभ्यास देना उपयोगी होता है। यदि प्रशिक्षण का लक्ष्य किसी प्रक्रिया का सही निष्पादन है तो केवल परिभाषाएं पढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षार्थी को स्थिति पहचानने, विकल्प चुनने और परिणाम देखने के अवसर चाहिए। पुस्तक का व्यावहारिक योगदान यह है कि वह सिद्धांत को अमूर्त अकादमिक चर्चा तक सीमित नहीं रखती बल्कि सामग्री, गतिविधि और आकलन के चुनाव से जोड़ती है। इस दृष्टि से डिजाइनर का प्रश्न बदल जाता है। प्रश्न यह नहीं रहता कि स्क्रीन को अधिक रोचक कैसे दिखाएं, बल्कि यह बनता है कि कौन सी सूचना किस क्रम में और किस अभ्यास के साथ दी जाए ताकि शिक्षार्थी बाद में अपेक्षित कार्य कर सके। अंत में ग्राहकों, विषय विशेषज्ञों और विकास टीम के साथ सहयोग तथा मूल्यांकन की भूमिका ई-लर्निंग परियोजना प्रायः एक व्यक्ति का काम नहीं होती। पुस्तक ग्राहक, विषय विशेषज्ञ और डेवलपर के साथ काम करने को डिजाइनर की मुख्य पेशेवर क्षमता के रूप में शामिल करती है। ग्राहक व्यावसायिक जरूरत और प्राथमिकताएं बताता है, विषय विशेषज्ञ सामग्री की सटीकता में योगदान देता है और विकास टीम विचार को तकनीकी अनुभव में बदलती है। इन भूमिकाओं के बीच डिजाइनर का कार्य केवल संदेश पहुंचाना नहीं बल्कि सीखने के लक्ष्य की रक्षा करते हुए अपेक्षाओं को स्पष्ट करना भी है। विषय विशेषज्ञ के पास विस्तृत ज्ञान हो सकता है किंतु हर विवरण शुरुआती शिक्षार्थी के लिए जरूरी नहीं होता। इसलिए दायरा, निर्णय अधिकार, समीक्षा बिंदु और प्रतिक्रिया की प्रक्रिया आरंभ में स्पष्ट करना परियोजना को भटकने से बचाता है। पुस्तक परीक्षण और मूल्यांकन को भी अंतिम औपचारिकता नहीं मानती। फॉर्मेटिव मूल्यांकन विकास के दौरान प्रतिक्रिया लेकर सामग्री, निर्देश और उपयोगिता में सुधार का अवसर देता है। समेटिव मूल्यांकन परियोजना के बाद यह जांचने में सहायक होता है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं। दोनों को मिलाकर देखने से टीम केवल यह नहीं जानती कि मॉड्यूल प्रकाशित हुआ बल्कि यह भी समझती है कि वह सीखने और प्रदर्शन पर कितना उपयोगी प्रभाव डाल रहा है। यही पुनरावृत्त जांच भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेहतर निर्णयों का आधार बनती है। निष्कर्ष में, द ई-लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन रोडमैप उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में नए हैं, किसी दूसरे पेशे से इस क्षेत्र में आ रहे हैं या बिना औपचारिक डिजाइन पृष्ठभूमि के अपनी संस्था के लिए डिजिटल प्रशिक्षण तैयार कर रहे हैं। अनुभवी पेशेवरों के लिए इसकी बुनियादी सामग्री परिचित हो सकती है लेकिन उन्हें भी इसे नए सहयोगियों के लिए साझा संदर्भ या परियोजना आरंभ की चेकलिस्ट की तरह उपयोगी पाया जा सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह ई-लर्निंग विकास को अलग अलग कौशलों के बिखरे हुए समूह के रूप में नहीं छोड़ती। यह सीखने की आवश्यकता पहचानने, कार्य का विश्लेषण करने, लक्ष्य लिखने, सामग्री और अभ्यास तय करने, हितधारकों से समन्वय करने तथा परिणाम जांचने के चरणों को एक ही कार्य प्रवाह में रटती है। इसकी विशेषता गहरी सैद्धांतिक विशेषज्ञता का दावा करने में नहीं बल्कि जटिल पेशेवर क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार तैयार करने में है। ADIE, सैम, स्मृति, मूल्यांकन और परियोजना सहयोग जैसे विषय कई पुस्तकों में मिलते हैं पर यहाँ इन्हें नए व्यक्ति की वास्तविक उलझनों के संदर्भ में जोड़ा गया है। सरल और अपेक्षाकृत अनौपचारिक प्रस्तुति इसे भारी पाठ्यपुस्तक से अलग बनाती है। फिर भी इसका उपयोग तभी अधिक होगा जब पाठक इसे तैयार नुस्खों की सूची मानने के बजाय हर परियोजना में प्रमाण, शिक्षार्थी की जरूरत और कार्यस्थलीय संदर्भ के आधार पर निर्णय लेने का ढांचा माने। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ऑब्री कुक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।